आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भारतीय ज्ञान की वो विरासत है जिसकी जड़ें भारतीय पौराणिक युग से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि विदित ही है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी, जब 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इस विषय पर बात की और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, ये क्या है, इसी पर चर्चा कर रही हैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति, जिन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि पर लगातार काम करते हुए कई ग्रंथों का काव्यात्मक और व्याख्यात्मक अनुवाद किया है। तो वो बताती हैं।
अनीता जी, योग शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दर्शन और एक फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है
जी।
और योग वास्तव में जीवन के रूपांतरण का ज्ञान है, जो वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ये वास्तव में प्राण से प्राणाधार तक की यात्रा है, जो देह से तो आरंभ होती है लेकिन देहांतर तक जाती है। और इसकी जो मान्यता है वो वैज्ञानिक रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में इसलिए स्वीकार की गई है कि जो विज्ञान का और हमारे देह के तंत्र हैं, उनका जो वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया, हमारा स्वभाव है कि वैज्ञानिक ने कहा तो हमने माना, लेकिन हम तो युगांतर पहले से ऋषियों की ने जो दर्शन हमें दिया, जो गूढ़ रहस्य हमें दिए, उन पर आज उजागर होने का समय आ गया है। कह सकते हैं आज ही आया समय है, तो ये बहुत पहले से जिसे किसी ने बनाया नहीं है। तो इसमें वैज्ञानिकों ने या हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, इसे पिंड और ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में हो रहा वो हमारे अंदर है, हम पहचाने नहीं अपनी शक्ति को। तो इसमें 72,72,10,000 और 200 समथिंग नाड़ियां हैं जिनका शोधन केवल योग से अर्थात प्राणायाम से होता है। इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने माना, आज ये है युग की आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचाना जाता है
जी। ये तो युगों युगों से हमारे ज्ञान का भंडार था, उसको मान्यता चाहे बहुत देर से मिली, तो किसके लिए कहा जाएगा कि ये शुरू कैसे हुआ था?
ये जब हम बीज रूप में जाए, जहाँ से बीज ये अंकुरित हुआ है
जी।
तो सबसे पहले हमें भारत के 6 दर्शनों पे जाना पड़ेगा। हमारे जो षट दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य दर्शन
जी।
तो सांख्य दर्शन से पातंजलि योग के जो सूत्र हैं वो मिले हुए हैं। ये ऋषि पातंजलि ने लिखा और सांख्य दर्शन को ऋषि कपिल ने लिखा था। तो उसमें ये जो दिया गया है सूत्र, वो युगों युगों अंतर पहले से हैं, लेकिन बीच की भौतिकता में हम इसे नकारते चले गए। और जब चीज खो जाती है और कोई इसकी मान्यता देता है, तब हम उसको मानते हैं। आज तो योग शब्द ही इतना परिचित हो गया है जिसे मतलब व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं। और इसमें जो है, इसलिए उन्होंने माना कि हमारा जो इसमें पातंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग दिया हुआ है। इसमें अभी मैं योग दर्शन का छोटा सा परिचय दूं कि योग दर्शन जीव के ये जो पंचमय कोश हैं, ये 5 हमारे कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय कोशों के गूढ़ मर्म और उनमें छुपी हुई शक्तियों को उजागर करता हुआ देह के सुप्त बिंदुओं को जागृत करता है, और जागृत करता हुआ हमें देह से विदेह की ओर उन्मुख करता हुआ आनंदमय कोश में प्रवेश कराने का विज्ञान इतना गहरा विज्ञान है। मतलब ये बात करते हुए भी सिहरन होने लगती है इसकी कि क्या था जिसके हम केवल सांस लेना, आना जाना सोचते हैं और यंत्रवत करते रहे, जैसे हम इसके लिए प्रोग्राम्ड थे, बस तो होती रही सांस, लेकिन हर सांस में प्राण है और प्राण है प्राणाधार है, कितना विज्ञान। इसको जब उजागर हुआ तो लोगों ने इसकी मान्यता मानी। और फिर दूसरी बात है कि साधना जो है वो, मानिए अनीता जी, साधना तो देह में ही रहकर होती है ना, तो विदेह अंतरात्मा साधना नहीं कर सकता, इसीलिए देह की आत्मा, देह जो है वही हमारी उन्नति का साधन है। अतः देह का स्वस्थ, संयमी और स्वच्छ रखना योग
जी
के अंग है। और
जी
सच मानिए तो शरीर कोई है नहीं, श्रेय पाने का साधन है। असली बिखराव तो तब आता है
जी
जब अनीता जी हम देह को ही सर्वस्व मान लेते हैं।
जी तो एक बिल्कुल ही सरल शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो एक स्वस्थ तन है उसके अंदर जो एक स्वस्थ मन है और उसके अंदर शुभ और स्वस्थ विचार हों, इस क्रिया को पाने की जो साधना है वही योग दर्शन का मुख्य ज्ञान है, ऐसे कह सकते हैं।
या बिल्कुल यही आपने सार निकाल दिया,
जी
धन्यवाद इसके लिए। तो ये विशेष रूप से योग दर्शन की, जो पतंजलि योग दर्शन लिखा गया है, ये वस्तुतः गणितीय भाषा में लिखा गया है।
हाँ
गणितीय भाषा का अर्थ है जैसे 2 और 2 4 होते हैं, या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, बिल्कुल इस तरह है। ये गणितीय भाषा में लिखा गया है।
जी
इसको सूक्त इसीलिए बोलते हैं, इसके जो 2 सूक्त हैं शुरू के लेते हैं, उसमें आप देखिए कि वो 2 सूक्त का ही विस्तार पूरे पूरी पातंजलि योग दर्शन में।
अच्छा
एक है
जी
अथ योगा अनुशासनम, दूसरा है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो बड़ा ही रोमांच होता है ये जानकर, योग में अगर तुम इस यात्रा में प्रविष्ट होते हो तो तुम्हें अनुशासन और नियमों से बद्ध होकर ही चलना पड़ेगा। अनुशासन के अंतर्गत योग करने में कुछ नियमों का संवहन करना पड़ता है, उसमें अष्टांग योग दिया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन
जी
नियमों का संवहन जो है योग का आधार है। जीवन को नियमित करने की ये विधा उन्होंने बताई। और दूसरा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। तो उधर स्वस्थ तन किया और स्वस्थ मन के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। जो
जी
मन का बिखराव है वही विश्व में विकारों का कारण है। यह आपके विचारों का सिमटाव ही जीवन में शांति और सुख शांति लाता है।
मृदुल जी, आपने पतंजलि योग दर्शन और अन्य दूसरे ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया है, तो जानना चाहूंगी उसके बारे में भी आपसे।
अनीता जी, वैसे देखा जाए तो जो संस्कृत की भाषा की जो क्लिष्टता कह लीजिए, कठिनाई, जो क्लिष्ट भाषा है और वो प्रचलन में भी नहीं है, तो
हाँ
इसके कारण जनमानस जो ऋषियों की कहे हुए जो उपदेश हैं
जी
उनसे दूर होते चलेगा, क्योंकि वही बातें आत्मसात जनमानस में होती हैं जो उनकी ही भाषा में हो। तो अभी जो आपने प्रश्न पूछा, तो उसकी ईश्वर की कृपा से मैंने अन्य 17 महाग्रंथों का काव्य में रूपांतरण या अनुवाद कह लीजिए वो किया है। वो विभिन्न छंदों में किया है,
हाँ
जैसे चौपाई दोहा रामायण की तरह दोहा चौपाई गीतिका हरि गीतिका छंदों में किया है।
जी
और जो भगवत गीता है वो तो मैंने ब्रज भाषा में, कान्हा की भाषा में,
जी
ग्रंथों के अगर सामवेद और उपनिषदों में 9 उपनिषद, ईशकेन, कठ, प्रश्न मुंडक, मांड्यूक, ऐत्रेय, तैत्री, श्वेताक्षर, फिर भगवत गीता ब्रज भाषा में, और अष्टावक्र गीता राजा जनक का जो संदेश है, और शंकर पांचदशी उनके स्तुति श्लोक साहित्य, फिर पतंजलि योग दर्शन और आदि गुरु शंकराचार्य के जो विवेक चूड़ामणि आदि, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का काव्य में ऐसे अनुवाद किया जिससे वो संस्कृत से निकलकर उनके भाव हिंदी काव्य में जनमानस, मतलब जनप्रियता में आ जाए और
जी
उनके प्रति उनकी प्रियता और निजता बढ़े, यही
जी
मेरा।
जी और अभी क्योंकि हम योग दर्शन की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ उदाहरण आप हमें दे सकती हैं?
जी हाँ, तो जैसे मान लीजिए इसका एक बहुत ही प्रचलित सूक्त है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तो वो उसका काव्यानुवाद बताती हूँ। चौपाई छंद में है
जी
कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, कि जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम और चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा।
क्या बात है, मृदुल जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इतने सरल शब्दों में योग के बारे में हमें ये जानकारी दी।
धन्यवाद अनीता जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे SBS के मंच पर बुलाया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व इसको मना रहा है, बहुत बड़ी बात है यह हमारे भारतीय दर्शन के लिए। और लोग इससे बहुत ज्यादा आश्वस्त हो चुके हैं कि तन और मन स्वस्थ करने के लिए योग के मार्ग पर चलना जरूरी भी हो गया है, और सब इसकी महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि पूरे विश्व में ये तन और मन को और विचारों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया का और अधिक गहराई से संबंध किया जाए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।